लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस अपनी 37वीं प्रेरितिक यात्रा पर 24 जुलाई को कनाडा के एडमोंटन पहुंचे। प्रायश्चित की इस तीर्थ यात्रा के द्वारा पोप वहां के मूलवासी लोगों के साथ चंगाई एवं मेल मिलाप की प्रक्रिया को समर्थन देना चाहते हैं। इटालिया एयरवेज द्वारा रोम से करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद पोप कनाडा के समय अनुसार 11:09 पर एडमोंटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। उनके आगमन पर कनाडा के नागरिक एवं धार्मिक अधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गवर्नर जनरल मेरी सिमोन, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अल्बर्टा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मलाखानी ने संत पापा का आधिकारिक रूप से स्वागत किया। मूलवासियों के प्रतिनिधियों ने भी एक छोटा कार्यक्रम पेश कर उन्हें अपना प्यार दिखाया। स्वागत के बाद संत पापा संत जोसेफ सेमिनरी गए। ज्ञात हो कि कनाडा रोम से 8 घंटा पीछे है, अतः सोमवार को होने वाला संत पापा का पहला कार्यक्रम रोम समय अनुसार शाम 6 बजे होगा, जिसमें वे फर्स्ट नेशन 33 और इनुइट मूलवासी लोगों से मुलाकात करेंगे। सोमवार को ही उनकी दूसरी मुलाकात होगी, जिसमें वे एडमोंटन स्थित पौत्र हृदय गिरजाघर में पल्ली के मूलवासी ख्रिस्ती समुदाय से मुलाकात करेंगे। संत पापा फ्रांसिस मुख्य रूप से कनाडा के मूलवासी लोगों से मुलाकात करने कनाडा पहुंचे हैं। उनसे पहले उनके पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भी कई बार कनाडा के मूलवासियों से मुलाकातें की थीं। उन्होंने उनकी संस्कृति की प्रशंसा की थी तथा स्वीकार किया था कि उनके अधिकारों को बनाए रखने और गांवों पर मरहम पट्टी बांधते हुए सभी विभाजनों को ठीक करने का समय आ गया है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने परमाध्यक्ष काल में 3 बार कनाडा की यात्रा की थी, सन 1984 में, 1987 में और 2002 में। 1984 में कनाडा की पहली प्रेरितिक यात्रा पर वे 9 सितंबर को क्वीबेक पहुंचे थे और 20 सितंबर को रोम वापस लौट गए थे। 12 दिनों की अपनी प्रेरितिक यात्रा में उन्होंने मूलवासी लोगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने उनकी संस्कृति की सराहना करते हुए उनके अधिकारों का बचाव किया था। कनाडा पहुंचने पर 10 सितंबर को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने क्वीबेक स्थित ब्यूप्रे के संत अन्ना राष्ट्रीय तीर्थस्थल पर मूलवासी लोगों से मुलाकात की थी। यह उत्तरी अमरीकी देश का एक प्राचीन तीर्थस्थल है। अपने बुजुर्गों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए मूलवासी यीशु की नानी संत अन्ना की विशेष भक्ति रखते हैं। इस मुलाकात में 10 विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Dear brothers and sisters, I have come to call you to Christ, to propose again for you and all Canada.
अपने संबोधन में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने लोगों के बीच मेल मिलाप के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था,
If we truly believe that God created us in His image, we shall be able to accept one another with our differences.
कि यदि हम सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, तब हम विविधताओं के बावजूद एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे। उन्होंने बतलाया था कि केवल यीशु ही हर प्रकार के स्वार्थ की जंजीर को तोड़ सकते हैं।
Jesus Christ, in whom we believe, can break the chains.
संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 15 सितंबर को हुरोनिया में कनाडा के शहीद तीर्थस्थल का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने शब्द समारोह संपन्न किया था। इस समारोह में करीब 1,00,000 विश्वासियों ने भाग लिया था। शहीद तीर्थस्थल को संत पापा ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच विश्वास की एकता का प्रतीक बतलाया था। उन्होंने हुरोन लोगों के बीच जेसुइट मिशन के इतिहास के भी याद किए थे। हुरोनिया के मिशन में 8 जेसुइट मिशनरी थे, जिनके बारे संत पापा ने कहा था कि उन मिशनरियों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने एक ऐसे दिन को देखने की कल्पना की जब मूलवासी पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करेंगे और अपनी कलीसिया का नेतृत्व करेंगे। संत जॉन दी ब्रेव्यूफ ने कलीसिया को एक पूर्ण कैथोलिक और एक पूर्ण हुरोन के रूप में कल्पना की थी। संत पापा ने वहां धन्या का तेरी तिकाकविता, जोसेफ कीवा तेवा, उनकी पत्नी अनुनेता, उनके भाई जोसेफ एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों की याद की थी, जिन्होंने साहस के साथ विश्वास का साक्ष्य दिया था। मूलवासियों की संस्कृति के बारे बोलते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि अपने लंबे इतिहास में कलीसिया खुद लगातार नई परंपराओं से समृद्ध हुई है, जो उसके जीवन एवं विरासत से जुड़ गई है, और आज हम उस भूमिका के लिए आभारी हैं जिसको मूलवासी निभाते हैं, न केवल कनाडाई समाज के बहु सांस्कृतिक ताने बाने में बल्कि कैथोलिक कलीसिया के जीवन में भी। उन्होंने श्रोताओं को स्मरण दिलाया था कि न केवल मूलवासी लोगों के लिए ख्रिस्त धर्म प्रासंगिक है, बल्कि ख्रिस्त अपने शरीर के अंगों में स्वयं मूलवासी हैं। उन्होंने कहा था, मैं आपकी प्रतिष्ठा की घोषणा करता और आपके भाग्य का समर्थन करता हूँ। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय अपनी प्रेरित यात्रा में फोर्ट सैम्पसन में फर्स्ट नेशन, इनुइट और मेतिस की समितियों के सदस्यों से मुलाकात करने वाले थे, किंतु खराब मौसम के कारण वे येलो लाइट में उतरे तथा वहीं से अपना संदेश दिया, जिसमें उन्होंने मूलवासी लोगों के अधिकारों का बचाव किया था। उन्होंने कहा था,
I greet you all.
आपका अभिवादन करने का अर्थ है उत्तरी अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र में मानव समाज की शुरुआत को सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना। आपका अभिवादन करना ईश्वर की योजना एवं कृपा को सम्मान के साथ याद करना है, जो इतिहास में प्रकट हुआ और आपके द्वारा आज यहाँ पहुँचा है। आपकी भूमि के इस भाग में आपका अभिवादन करना मानव जीवन की उन घटनाओं को याद करना है, जो इन भागों में ईश्वर की मूल भव्य प्रकृति की रचना के दृश्य पर घटित हुई है। साथ ही मेरा आपके बीच आना आपके अतीत की ओर देखता है, ताकि आपकी गरिमा की घोषणा की जा सके और आपके भाग्य का समर्थन किया जा सके। संत पापा ने कहा था, समय आ गया है घावों को बांधने का, विभाजन को चंगा करने का, या क्षमाशीलता का मेल मिलाप करने का और नए संबंधों को स्थापित करने हेतु प्रतिबद्धता का समय है। आज मैं घोषित करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता, जिसकी जरूरत न्याय एवं मूलवासी लोगों के रूप में अपने स्वयं के जीवन में आत्मनिर्णय के लिए है, मैं पूरी कलीसिया के साथ एक होकर आपके अधिकार और इससे संबंधित कर्तव्य की घोषणा करता हूं। मैं शारीरिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्पीड़न की भी निंदा करता हूं और उन सबकी जो किसी भी तरह से आपको या किसी भी समूह को आपके अधिकार से वंचित करते हैं।
Et au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de tout cœur.
ये थे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के शब्द, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 24 जुलाई को दादा दादी और बुजुर्गों के दूसरे विश्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा के लिए अपनी उड़ान पर दादा दादी एवं बुजुर्गों को याद किया और उनकी प्रशंसा की। कलीसिया हर साल जुलाई के चौथे रविवार को बुजुर्गों का विश्व दिवस मनाती है। यह येसु के नाना नानी संत जोआकिम और संत अन्ना के पर्व के करीब पड़ता है। संत पापा फ्रांसिस ने 2021 में इस दिन की स्थापना की थी, क्योंकि दादा दादियों एवं बुजुर्गों को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन वे पीढ़ी के बीच की कड़ी हैं, जो युवाओं को जीवन और विश्वास का अनुभव कराते हैं। संत पापा ने कहा, आज दादा दादी का दिन है। दादा दादी जो इतिहास, परंपराओं, आदतों और कई अन्य मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, आज हमें दादा दादी के पास वापस जाने की जरूरत है। हमें अपनी जड़ों की ओर वापस जाना चाहिए, वहाँ रहने के लिए नहीं, लेकिन उस पेड़ की डालियों के समान बने जो जड़ से रस लेता है और डालियों में फल फूल लगते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे दादा दादी आने वाली पीढ़ियों के लिए खिलने और परिपक्व होने के जिम्मेदार हैं और इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। संत पापा ने कहा, मैं बुजुर्ग पुरोहितों, धर्म बहनों को धर्म संघी जीवन के दादा दादी के रूप में भी याद रखना चाहूँगा। कृपया उन्हें छिपाए नहीं, उनके पास धर्म संघी जीवन का अनुभव और ज्ञान है, और युवा पुरोहितों, धर्म बहनों और नवसिखियों को उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। वे हमें जीवन का वह सारा अनुभव साझा करेंगे जो हमें धर्म समाजी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। संत पापा ने याद दिलाया कि हम में से प्रत्येक के दादा दादी हैं, कुछ चले गए हैं और अन्य जीवित हैं। आइए हम आज उन्हें एक खास तरीके से याद करें। उनसे बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, हम उन्हें धन्यवाद दें। और संत पापा फ्रांसिस अपनी 37वीं प्रेरितिक यात्रा के लिए कनाडा में हैं। कनाडा के मूल वासी संत पापा फ्रांसिस के पश्चाताप और सुलह के संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रविवार की सुबह जब संत पापा फ्रांसिस कनाडा पहुंचे थे, तब एडमोंटन शहर के पवित्र हृदय महागिरजा घर में मूलवासी रविवार या मिसा पूजा समारोह मना रहे थे। पवित्र मिसा की शुरुआत स्माजिंग समारोह के साथ हुई। मूलवासियों की एक परंपरा जिसमें औषधीय पौधों को प्रतीकात्मक सफाई के रूप में जलाना शामिल है। पवित्र हृदय पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर सुसाई येसु OMI ने वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि स्वागत और समावेश समुदाय के मूल्यों के केंद्र में है। पवित्र हृदय पल्ली के लोग सोमवार दोपहर को संत पापा फ्रांसिस का अपनी पल्ली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फादर मार्क ब्लूम ने मिसा के दौरान अपने प्रवचन में कहा कि संत पापा की कनाडा आने की खुशी के साथ साथ इस यात्रा का एक गंभीर उद्देश्य भी है। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु कनाडा में एक मिशन पर आ रहे हैं। वे कलीसिया के सदस्यों और संस्थानों द्वारा मूलवासियों को दिए गए नुकसान के लिए प्रायश्चित करने आ रहे हैं। फादर ब्लूम ने आवासीय स्कूल प्रणाली के इतिहास में कलीसिया की भूमिका को स्वीकार किया कि कलीसिया मूलवासी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अच्छी चीजें पारित करने के प्रयासों में हस्तक्षेप करती थी। उन्होंने मूलवासी बच्चों को उनके घरों और परिवारों से ले जाकर अपनी भाषा, ज्ञान, पारिवारिक जीवन, भूमि, आध्यात्मिकता और बहुत कुछ देने के अवसर से वंचित कर दिया। उसके लिए कलीसिया क्षमा मांगती है और उन्होंने अपनी आशा व्यक्त की कि मूलवासियों के साथ चलकर कलीसिया की सुलह की प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम होगी, जो आने वाले वर्षों में फल देगी। उधर मानवीय गलियारों के माध्यम से अफगानिस्तान के 300 शरणार्थी बुधवार 27 जुलाई शाम 4 बजे इटली के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं। इटली में उनका आगमन राज्य और संघों के एक समूह के बीच एक प्रोटोकॉल के माध्यम से हुआ है। करीब 230 अफगान शरणार्थी जो पिछले अगस्त से पाकिस्तान में शरणार्थी थे, इस्लामाबाद से उड़ान भरते हुए इटली के फ्यूमिचिनो पहुंचेंगे। ईरान से आज 25 जुलाई और गुरुवार 28 जुलाई के लिए निर्धारित 300 से अधिक अफगान शरणार्थियों का इटली में स्वागत किया जाएगा। इटली में उनका प्रवेश इटली के साथ समझौता ज्ञापन के साथ संभव हुआ है, जिस पर 4 नवंबर 2021 को इटली में एवांजेलिकल कलीसियाओं के संघ, संत इजिदियो समुदाय, तालोवा वाल्डेज, आर्की, कारितास इटालियाना, आईओएम, आईएनएमपी और यूएनसीएचआर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना पूरी तरह से प्रस्तावित संघों द्वारा वहन की गई। कई इतालवी नागरिकों ने अपने घरों को मेजबानी के लिए पेशकश किया है। इसमें कई धर्म समाजों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के विभिन्न हस्तियों का भी हाथ है। उधर कीव और मास्को द्वारा भूखी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में वर्णित अनाज निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद विस्फोटों ने एक महत्वपूर्ण यूक्रेनी बंदरगाह को हिला दिया है। शनिवार का हमला रूस और यूक्रेन द्वारा अनाज निर्यात पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि दो रूसी मिसाइलें शनिवार तड़के बंदरगाह शहर ओडेसा से टकराई। रविवार 24 जुलाई को यूक्रेन आक्रमण के छठे महीने में प्रवेश किया। डोनेस्क क्षेत्र में रूसी सेना द्वारा पिछले 24 घंटों में किए गए हमलों में 8 लोग घायल हो गए और यूक्रेनी सेना ने दक्षिण में एक रूसी कमांड पोस्ट और कुछ गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया। विस्फोट रूस और यूक्रेन द्वारा इस्तांबुल में शुक्रवार को खाद्य समझौते पर हस्ताक्षर का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि हमले ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए रूस की पूर्ण अवहेलना को दिखलाया और यूरोपीय संघ इसकी कड़ी निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित सौदा यूक्रेन को 22 मिलियन टन अनाज और अन्य कृषि वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम करेगा। रूस के आक्रमण के कारण ये माल काला सागर के बंदरगाहों में फंस गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।